मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे ऑल इंडिया सर्विसेज में जो डिपुटेशन की स्थिति होती है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन जो दूसरी घटनाएं हैं, खबरें हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। अखबारों में आपने एक खबर पढ़ी होगी जिसे अखबारों ने लिखा है, ज्योत में मिली ज्योत, यानी कि जो दो अलग अलग ज्योतियां थीं, फ्लेम्स थे, वे एक में मिल गए हैं। और ये दो फ्लेम कौन कौन से हैं? एक है अमर जवान ज्योति, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि प्री में पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। एक अमर जवान ज्योति, ये जो अमर जवान ज्योति है ये बेसिकली इंडिया गेट वोट क्लब के पास, संसद के पास में, दिल्ली में इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट में ही, आपको मालूम है कि जो इंडिया गेट है वो बेसिकली हमारे जो शहीद हुए अंग्रेजों के समय में युद्ध में लड़ते हुए, उन प्रथम विश्व युद्ध में और इसके बाद अंग्रेज अफगान युद्ध में, उनकी स्मृति में बनाया गया था इंडिया गेट। यानी कि इंडिया गेट हमारे औपनिवेशिक युद्ध की एक स्मृति है, आप कह लीजिए अंग्रेजों के समय में वो युद्ध लड़ा गया था, हमारे जो नौजवान थे वो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, इंडिया गेट की सिचुएशन। उस इंडिया गेट में बकायदे एक ज्योति प्रज्वलित की गई जिसका आरंभ या कह लीजिए उद्घाटन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 26 जनवरी 1972 को किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, आपको ध्यान होगा, उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उस युद्ध में जो शहीद हुए थे बकायदे उनके नाम उकेरे गए और उनके सम्मान में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई, राइट? अब आप दूसरी तरफ चलिए। इसके बाद फिर एक आप यूं कह लीजिए कि भवन बनाया गया, स्मारक कह लीजिए, राष्ट्रीय समर स्मारक, नेशनल वार मेमोरियल, थोड़ी सी ही दूरी पर है। इसका उद्घाटन किया हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। और इस स्मारक में आजादी के बाद, याद रखिए, आजादी के बाद जो हमारे नौजवान शहीद हुए, लगभग 25,942 एग्जैक्ट डेटा है, उनके नाम उकेरे गए। तो अब आप देखिए कि जो बकायदे जो अमर जवान ज्योति है वहां प्रज्वलित की गई, वो हमारे अपने अपनी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, और यहां जो वार मेमोरियल बनाया गया वहां जो ज्योति जलाई गई, तो जो अमर जवान ज्योति है वो बकायदे वार मेमोरियल की ज्योति में विलीन कर दी गई, ठीक? ये घटना हुई है। अब इसको लेकर के डेफिनेटली पार्टियां अपनी अपनी बात करेंगी, अपने अपने ढंग से इसको एनालाइज करेंगी, लेकिन आपके दिमाग में यह घटना इस तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया गेट, और एक है गेट वे ऑफ इंडिया, जो गेट वे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है, बिल्कुल अरब सागर के तट पर बनाया गया है। खासकर 1911 में जब किंग जॉर्ज द फिफ्थ ब्रिटेन से आ रहे थे और उनकी पत्नी क्वीन मैरी आ रही थी, तो उनके सम्मान में 1911 में गेट वे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो कभी कभी इंडिया गेट और गेट वे ऑफ इंडिया में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये तथ्य आपके स्पष्ट होने चाहिए। दोस्तों, इसी इंडिया गेट पर कल सुभाष चंद्र बोस जी की जो होलो ग्राफिक स्टैचू है, आप कह लीजिए होलोग्राम तकनीक से एक प्रतिमा बनाई गई है, दिखाई गई है, स्थापित की गई है, बाद में अब यहां उनका स्टैचू भी लगाया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप मॉडर्न इंडिया के लिए फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ें तो सुभाष चंद्र बोस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, खासकर मेंस का फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का, तो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा प्रश्न 2 साल में एक बार आ ही जाता है, चाहे सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन को लेकर के, या सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के सिद्धांतों में जो अंतर रहा है उसको लेकर के, या आजाद हिंद फौज को लेकर के, या आजाद हिंद फौज के बाद के बारे में जो बाद में एक मुकदमा चला उसको लेकर के, कुछ कोई ना कोई प्रश्न इस तरह का आ ही जाता है, तो इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, जो होलोग्राम तकनीक से जो तस्वीर बनाई गई है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तकनीक है ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, यानी कि एक प्रोजेक्टर के द्वारा एक तस्वीर बनाई जाती है, तो ये जो छवि होती है जहां सुभाष चंद्र बोस आपको दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, वो बेसिकली आभासी है, वर्चुअल है, वास्तव में नहीं है। होता यह है कि एक प्रोजेक्टर के जरिए एक स्क्रीन पर थ्री डायमेंशनल छवि दिखाई जाती है, लेकिन यह है तो थ्री डायमेंशन, आप बकायदे बिना 3D के चश्मे के भी इसे देख सकते हैं, देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप 3D चश्मा लगाएं। और जिस स्क्रीन पर यह छवि दिखाई जाती है वो 90% पारदर्शी होती है। पारदर्शी होती, चूंकि ये पारदर्शी होती है तो जो देखने वाले हैं उनको लगता है कि वास्तव में ये स्टेचू है, और उस स्टेचू को आप चारों तरफ से देख सकते हैं। जैसे जनरली जो मूर्तियां होती हैं आप फ्रंट साइड से ही देखते हैं ना, इसको आप चारों तरफ से देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको जो होलोग्राम जो तकनीक है उसके बारे में दी है। फ्रेंड्स, यहां एक बात आपको और बताना चाहूंगा, बीटिंग द रिट्रीट शब्द आपने सुना होगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है और इसके कुछ दिनों के बाद बीटिंग रिट्रीट होता है। बीटिंग रिट्रीट का मतलब है सेना का वापस होना। पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो सेना मैदानों में लड़ती थी, दिन भर युद्ध होता था और जैसे ही सूर्यास्त होता था तो सेनाएं जो है अपने अपने आप कह लीजिए कि कैंप में लौट जाती थी। तो यह है बीटिंग द रिट्रीट, यानी कि 26 जनवरी की परेड हो गई, कुछ दिनों के बाद अब वो वापस लौट रहे हैं। तो इस बीटिंग द रिट्रीट में हमारे आजादी के बाद से 1950 से आप कह लीजिए कि जब से गणतंत्र दिवस यानी कि हमारे संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई, तो लौटते समय एक धुन बजाई जाती थी, एबाइड विथ मी। अंग्रेज कवि ने लिखा था, धुन भी अंग्रेजों ने ही बनाई थी और ये धुन कहा जाता है गांधी जी को बहुत पसंद थी, शायद इसीलिए ये धुन बजाई जाने लगी हो। तो अब सरकार ने निर्णय लिया है कि नहीं, अब ये धुन नहीं बजाई जाएगी और उसकी जगह जो धुन बजाई जाएगी वो है कवि प्रदीप का लिखा गीत, ए मेरे वतन के लोगों, है ना, ये गीत आपको कंठस्थ होगा ही, अब यह धुन बजाई जाएगी। तो दोस्तों, ये दो घटनाएं हैं, एक अमर जवान ज्योति की आपने देखा और दूसरा अभी आपने बीटिंग रिट्रीट का देखा। इसको लेकर के अपने अपने ढंग से बातें होंगी, आप उन सब पर अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये कला के अंतर्गत या कह लीजिए जो अपना उपनिवेशिक मानसिकता होती है, उपनिवेशवाद के जो कहे जाते हैं कि अवशेष अभी भी भारतीय चेतना में है, मुझे लगता है कि जब उससे संबंधित कोई आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यहां मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी इस बार दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। और एक बात और कि जो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती, अभी तो 125वीं जयंती हम मना रहे हैं, पिछले साल से उसे पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने रेडियो न्यूज़ सुनी हो तो उसमें एक खबर थी, छोटी सी खबर थी, सामान्य सी, बस आपके दिमाग में दर्ज करा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, और वो ये कि खीरे और ककड़ी के निर्यात के मामले में हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, खीरा और ककड़ी। चूंकि ये फसल से संबंधित है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट खबर है, बस जरा सा याद रख लीजिए, हो सकता है कि प्री में पूछ लिया जाए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, डेपुटेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से राय मांगी है, अब देखते हैं कि उस पर क्या होता है, लेकिन कहा जाता है कि केंद्र सरकार शादी से लागू कर देगी। कि जब भी केंद्र सरकार राज्यों से डेपुटेशन पर ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की डिमांड करेगी तो राज्य सरकारों को उसे भेजना ही होगा, ये है। तो इसको लेकर के राज्य, कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में अपीयर होने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज हैं जिन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। जैसे इंडियन शब्द तो बहुत से सर्विसेज के साथ लगा हुआ है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन लगा हुआ है, तो इससे बहुत से स्टूडेंट ऐसा मान करके चलते हैं कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऑल इंडिया अगर सर्विसेज कहते हैं तो उसके अंतर्गत सिर्फ 3 सर्विसेज आती हैं, शायद आप जानते होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट इंडियन फॉरेन सर्विस, यहाँ तक इंडियन फॉरेन सर्विस भी नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसका प्री एग्जामिनेशन आपके सिविल सर्विस के साथ ही होता है, फिर उनका मेंस अलग से होता है। तो तीन सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसकी एक विशेषता ये होती है कि इन सर्विसेज में जो भी लोग आते हैं उन्हें कैडर अलॉट हो जाता है कि उन्हें उन राज्यों में जा करके नौकरियां करनी पड़ेंगी। आपको जिस राज्य में भेज दिया गया, अब वह राज्य आपकी पोस्टिंग करेगा, आपकी सारी चीजें देखेगा, आपका प्रमोशन करेगा, सब चीज अब वह राज्य करता रहेगा। ठीक, तो जब जो मैं कह रहा हूं कि आपका कैडर अलॉटमेंट होता है, तो देखिए हर राज्य का तो कैडर होता है, लेकिन आपने सेंट्रल कैडर नहीं सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कैडर होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आईएएस ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है और इन बकायदे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो केंद्र क्या करे, केंद्र कहां से लोगों को लाए, ऑफिसर्स कहां से लाए? तो केंद्र राज्यों से डिमांड करती है कि भाई हमें अपने ऑफिसर दीजिए। तो बकायदे वो पहले निकालती है बकायदे आवेदन करने के लिए, और फिर ऑफिसर्स अपने अपने राज्यों में कहते हैं कि हम केंद्र में जाना चाहते हैं। तो अब ये राज्य के ऊपर है कि जब वहां के ऑफिसर्स एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, तो राज्य उन्हें स्वीकृति देती है कि नहीं देती है। जैसे मान लीजिए कि कोई रमन है, उसने कहा कि हाँ मैं जाना चाहता हूं केंद्र में डेपुटेशन के लिए, और वो मान लीजिए तमिलनाडु कैडर के हैं, अब तमिलनाडु सरकार उसे अलाउ करेगी तब उसका नाम केंद्र में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अभी ये देखा जा रहा है कि केंद्र में ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनकी काफी कमी हो रही है, राज्य उन्हें अपने यहां से नहीं छोड़ रही हैं, अलाउ नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार को कुछ इस तरह के निर्णय लेने पड़ रहे हैं और इसके लिए उनको बकायदे नियम में परिवर्तन करने होंगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा, कल मैं इस पर जो और दूसरी बातें हो सकती हैं जो आपको थोड़ी सी जाननी चाहिए वे आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, शुभम, कवलजीत कौर वडोदरा से, करमजीत कौर पंजाब से और अंजू यादव खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।